नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। भाइयों बहनों, जब कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो साधारणतया उससे गुण अवगुण दोनों से परिचित हो जाते हैं। कई बार उसे मिलते ही पता चल जाता है कि ये बहुत गुणी व्यक्ति है, बहुत गुणवान है, लेकिन कभी कभी ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ अवगुण है, और उसके मिलते ही उनके अवगुण भी हमारे सामने आ जाते हैं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आज कई बार हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े बड़े धर्म नेता, चाहे राजनेता, चाहे बड़े बड़े पदासीन उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी एक अहम झलकता है, अहंकार दिखता है। आखिर इस पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी, संजय भाई, आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है, अभिवादन है। जैसे हमने शुरू में बताया कि मनुष्य जो है भले बहुत ऊंचे पदों पर बैठ जाता है, बहुत अपने ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन कई बार उनके अंदर का जो अहंकार है वो झलकता है, दिखता है। आखिर ये अहंकार क्या है, इसके ऊपर थोड़ा परिभाषित कीजिए और इसके ऊपर विजय प्राप्त कैसे करें।
अहंकार के बारे में तो जानते हैं
जी,
बहुत लोग पाठ्यक्रमों में भी, भाषणों में भी लोग अहंकार पर कुछ ना कुछ लाइट जरूर डालते हैं
जी, जी जी जी,
लेकिन वो अपने अहंकार के बारे में नहीं जानते हैं। और वो मनुष्य जो अपने ईगो को पहचानता हो सचमुच बुद्धिमान है। ईगो, अहंकार, अपने को कार समझना, कार है ये देह, अपने को देह समझना, देह अभिमान में रहना, ये अहंकार है। मैंपन रखना, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, इस मैंपन में रहना, ये अहंकार है। और ये मनुष्य का महान शत्रु है। जब तक हम इसको परास्त नहीं करेंगे, जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं, न तो हम सुख चैन का जीवन जी सकेंगे और न हम अपने परिवारों में शांति पैदा कर सकेंगे। सचमुच अहंकार जब हम देखते हैं, चारों ओर सब कुछ दिखाई देता है, परिवार, डिपार्टमेंट, बड़े ऑफिसर्स, नेता लोग, एक दूसरे के मित्र भी और विरोधी भी, वैज्ञानिक भी और एक गांव का किसान भी, एक गरीब भी तो एक भिखारी भी, देखने में आता कहीं ना कहीं सभी में ये अहम ईगो समाया रहता है। लेकिन पहली चीज यही है कि हम अपने ईगो को पहचान लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है, क्योंकि इसको पहचानने के बाद हम अपनी आंतरिक शक्तियों में विकास कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को एक सफलता के मार्ग पे सहज ही आगे ले जा सकते हैं। मैं सोच रहा था
जी जी जी,
देखिए अहंकारी व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा समझता, बड़ी ऊंची नजर से अपने को देखता है, पर दूसरों की नजर में बहुत छोटा होता है। ये बात हम सभी ध्यान रखें और बस एक लक्ष्य बना लें कि हमें इस अहम से अपने को मुक्त करना है। चीजें सभी के पास होती हैं, सब कुछ सबके पास है, अगर हमें उसका अभिमान होगा तो हम उसका सुख नहीं ले पाएंगे।
जी, 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 जी। कहने का मतलब ये है कि अहंकारी व्यक्ति को अपने अहंकार को भी जानना आवश्यक है कि, लेकिन जनरली भाई जी हम देखते हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है या जिनके अंदर अहंकार है, वो अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरे अंदर अहंकार भी है, वो अपने आप को ऊंचा ही समझता, जैसे आप
ने बस यही होता है कि अगर सद्विवेक उसे प्राप्त हो जाए, और ये सद्विवेक हमें स्पिरिचुअलिटी से, हमें ईश्वरीय ज्ञान से मिलता है। हम लोग भी जब ईश्वरीय ज्ञान में आए तो पढ़ने लिखने में होशियार थे, तो एक संकल्प तो रहता था ना, मैं बुद्धिमान हूँ और सब लड़कों से होशियार, मेरा पहला नंबर आता है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये गलत हम सोच रहे हैं और इससे हमें नुकसान होगा। मुझे याद है जब हमने 10वीं का एग्जाम दिया तो हम दो फ्रेंड भी थे, दोनों स्टूडेंट टॉप मोस्ट थे, कभी उसका एक दो नंबर ज्यादा, कभी मेरा होता था। फाइनल एग्जाम में उसके नंबर थोड़े 4% कम रह गए
आपसे।
हाँ जी, तो नेचुरली वो जो एक पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलता है वो उसको नहीं मिला। तो उसके फादर मेरे से बहुत, हम लोग क्लोज थे, परिचित मिलने आए, कहा इस लड़के को बहुत अभिमान हो गया था अपनी बुद्धि का, उसका ही परिणाम है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये अभिमान ऐसा है क्या, तो हम भी तो सोचते हैं बुद्धिमान है। तो वहां से एक डीप रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ कि ये अभिमान सचमुच मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। फिर हम इतिहास भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे, ज्यादा तो नहीं, उसमें एक बहुत अच्छी चर्चा आया करती थी कि राजपूतों का पतन क्यों हुआ जबकि वो बहुत शक्तिशाली थे। तो दो ही चीजें गिनाते थे इतिहासकार, अभिमान और ईर्ष्या। तो हमारा इस पे ध्यान चलता गया। तो जैसे आपने कहा कि मनुष्य अगर अपने अभिमान को पहचान ले तो ये एक बहुत सुंदर कदम उसने जीवन में आगे बढ़ाया है जिंदगी का आनंद लेने के लिए। इस पर ही आज हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे।
जी जी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देखो जैसे भाई साहब ने बताया कि अहंकार जो होता है ये वास्तव में हमारी अपने लिए भी एक शत्रु है, परिवार के लिए भी शत्रु है, जिनके बीच में हम रहते हैं वहां पर भी हमारा विकास नहीं हो पाता है। तो वास्तव में थोड़ा सा अहंकार को और परिभाषित कीजिए कि इसका मूल रूप क्या है और इसके ऊपर विजय कैसे पाए।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। अहंकार अभिमान को यदि हम परिभाषित करें तो मैं बुद्धिमान हूँ ये गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को बुद्धू समझना ये अभिमान है।
जी,
मैं ऐसा समझती हूँ कि हर मनुष्य को अपने आप से भी मिलना चाहिए। हम दूसरों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, हम दूसरों से मिलते हैं, परंतु हम कभी खुद को नहीं मिलते, खुद को नहीं जानने की जिज्ञासा रखते। एक बार हम अपने अंतर मन में झांक कर देखें, जहां मुझे मेरी विशेषताओं का, योग्यताओं का पता है, मैं उनसे रूबरू हूँ, वहीं मुझे अपनी खामियों का भी पता रहना चाहिए। और जब मुझे अपनी खामियों का पता चल जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा, तब मैं उन खामियों को निकालने का भी प्रयास करूंगी। लेकिन उसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मुझे अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा बहुत ही ईमानदारी से। मैं दूसरे के साथ ईमानदार हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी ईमानदारी वो होगी जब मैं खुद से ईमानदार बनूं, और वो तब होगी कि जहां मुझे मेरी खूबियों का बहुत अच्छी तरीके से पता है, वहीं मुझे मेरी कमियों का भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरे में ईगो है और इस ईगो के कारण ये प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही है, मुझे भी खुशी नहीं मिल रही, मेरे अपनों को खुशी नहीं मिल रही, या मैं दूसरों के लिए भी एक अड़चन बन गया हूँ, दूसरों के लिए भय का कारण बन गया हूँ, तो जब ये मुझे पता चल जाएगा कि इस वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं उसे निकालने का भी प्रयास करूँ। और देखिए, कोई भी चीज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी विल पावर और मेरा एक पावरफुल थॉट, करने की इच्छा और एक शक्तिशाली संकल्प ही मेरा पहला कदम होगा जो इस पर जीत प्राप्त करा देगा। लेकिन अंदर से छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए।
हाँ।
और जब तक मैं आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है, तब तक हम अपनी किसी भी कमी को, बुराई को छोड़ नहीं सकते।
जी।
जब तक मुझे उसके लॉस का पता नहीं चलेगा, नुकसान का पता नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ हमारे भारत में भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, चाहे वो सड़कों के हों या और तरीके के हैं। देखिए, आप गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपको 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा।
जी, 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 जी।
है ना, एक बार यदि बेल्ट नहीं लगाई और आपको आपकी जेब में से 500 रुपए देने पड़े, पनिशमेंट या पेनल्टी जो भी देनी पड़ी, तो अगले दिन आपको ध्यान रहेगा कि पुनः मुझे 500 रुपए ना देने पड़े। तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले आपका हाथ किधर जाएगा, तुरंत बेल्ट खींचेंगे, आज ना 500 रुपए का नुकसान हो जाए। हम बाहरी जो रूल्स बने हैं, जब हमें उनकी पेनल्टी या उनकी पनिशमेंट देनी पड़ती है, उनकी तो हम ध्यान रखते हैं, चाहे बेमन से ही रखे पर रखते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ अंदरूनी रूल्स हैं जो हमारे मन के अंदर से चलते हैं। मान लीजिए, आत्मा का रूल है खुश रहना, प्रेम से रहना, शांति से रहना, और उसके विपरीत जब हम काम करते हैं तो हमने अंदर में कोई ना कोई नियम तोड़ा। नियम तोड़ा तो हमें आंतरिक रूप से उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है या हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। और वो क्या होती है, वो हमारी खुशी पे भारी पड़ती है, हमारी शांति को छीन लेती है, हमारे मन में भटकाव की स्थिति पैदा कर देती है, मन मुटाव पैदा कर देती है। ये हमारी पेनल्टी होती है, ये हमारी पनिशमेंट होती है जो आंतरिक रूप से होती है, जिस पर हम गौर नहीं करते। अगर हम जैसे बाहरी रूल्स का, नियमों का पालन करते हैं, ऐसे हम आंतरिक रूल्स का भी पालन करें तो किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी खुशी को छीन ले, कोई मेरी शांति को छीन ले। कहीं ना कहीं रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, इसकी पनिशमेंट, इसकी पेनल्टी मुझे देनी पड़ रही है। अगर मेरा जीवन अशांत है, परेशान है, मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास खुशी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है, कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन जरूर हुआ है। और वो मुझे तब पड़ेगा जब मैं शांति से, बड़े प्रेम से, बड़ी ऑनेस्टी से अपने अंदर झांक कर देखूंगी।
जी जी जी, यही आज की समस्या है कि मनुष्य जो है अपने आप को नहीं झांक पा रहा है, दूसरों को देखता है, दूसरों के अंदर कमी देखता है। ये भी तो अहंकार है, इनके अंदर तो ज्यादा अहंकार है, भले अपने अंदर भी रहेगा। संजय भाई, और इसको विस्तार से थोड़ा समझाइए कि जैसे गीता भाई ने बताया कि कई बार व्यक्ति जो है अपने अंदर झांक नहीं पाता है, अपने अंदर कमजोरी को देख नहीं पाता है, तो आखिर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अहंकार के ऊपर, कि मनुष्य के अंदर भले कितने भी गुण हो, लेकिन अगर एक अहंकार व्यक्ति के अंदर है तो सच में वो झलकता है उसके चलने में, उसके उठने में, उसके बैठने में। अहंकारी व्यक्ति के सामने कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन सचमुच आखिर अहंकार को क्या निकाला भी जा सकता है?
जरूर निकाला जा सकता है, और ऐसे हमने देखे भी हैं कि जिनका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी गीता बहन ने बताया ना कि मैं अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छा संकल्प है अपने लिए, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, ये अहंकार आ गया। स्वमान है कि मैं अच्छा हूँ और मैं ही अच्छा हूँ, ये आ गया अभिमान। तो अभिमानी व्यक्ति क्या करता है, या तो जिद करेगा या सिद्ध करेगा, अपनी बात को मनवाने का पूरा प्रयास करता रहेगा, और उसमें वो चाहे अपनी खुशी गंवानी पड़े या किसी को दबाना पड़े या कोई भी हथकंडे अपनाने पड़े, वो करता है क्योंकि उसको अपना अहंकार सिद्ध करना है। तो अहंकारी व्यक्ति से अपने आप लोग दूर हो जाते हैं, देखते हैं भाई ये अहंकारी व्यक्ति आ गया सामने, अब वो वहां का माहौल, वहां का सिस्टम सारा माना गंभीरता में डूबा रहेगा, वहां खुशी गायब हो जाती है उस माहौल से। तो उन्हें पहचानना तो बहुत ईजी है और उसे निकाला भी जा सकता है, क्योंकि हम जो राजयोग का अभ्यास करते हैं इसमें हम अहंकार को खत्म करके स्वमान को जागृत करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात स्वमान, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है और अहंकार पर विजय प्राप्त होती जाती है।
जी जी जी,
मैं बीच में ही इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था ये अभिमान भाइयों में ज्यादा होता है।
जी
मेरे मन में एकदम से ये उत्प्रेरक सा उत्पन्न हुआ।
जी,
मैं सोच रहा था, मैं अभी अभी देख कर आया, हमारे यहाँ बहने माताएं सेवा में आती हैं, तो रोटी बेल रही थी, सब्जी काट रही थी, एक दोस्त को मैं जानता था वो प्रोफेसर, एक आधी बहन डायरेक्टर, वो भी सब्जी काट रही है। मैं सोच रहा था भाई अगर कोई डायरेक्टर हो यहाँ आएगा भी नहीं, देखने भी नहीं आएगा, किचन में देखना, ये मेरी शाम के विपरीत है। फिर मैं सोचने लगा कि यार ये अभिमान तो सब में ही होता है, किसी में दिखावे में होता है, किसी में थोड़ा गुप्त होता है, पर फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारी मातृशक्ति में ये बहुत कम है, और जिसमें थोड़ा बहुत भी हो उसको इस पे विजय पा लेनी ही चाहिए।
भाई साहब, आप तो बहुत सहज रूप से बता रहे हैं कि अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सच में मेरा अपना अनुभव है, मैंने समाज में लोगों को देखा है कि इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े जो पदों पर बैठे रहते हैं उनका अहंकार झलकता है। क्या ये सचमुच संभव है आज ऐसी दुनिया के वातावरण में, जबकि सारा समाज अपने आप को बड़ा बनाने में, बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं, तो मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, तो इस पर क्या विजय पाया भी जा सकता है?
बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचा करता था कि ये श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, ये अभिमान, वहां तीन शब्दों का प्रयोग किया, अभिमान, घमंड और अहंकार, इन तीनों पे एक योगी विजय प्राप्त कर लेता है। तो मैं भी सोचा करता था, दुर्वासा ऋषि थे, योगी थे, क्रोध पे तो विजय प्राप्त की नहीं थी, अभिमान भी उनमें था, रावण तो बहुत बड़ा ही विद्वान था लेकिन अहंकार के कारण उसका सर्वनाश हो गया। फिर मैं औरों को भी देखता था, भाई बड़े बड़े लोग अहंकार से पीड़ित हैं, जैसे तो मुझे लगता था यार इसको जीतना बड़ा कठिन काम है। कुछ लोग ऐसे दिखाई देते थे बचपन से ही भोले हैं, इनमें अभिमान नहीं है, उनका दूसरा रूप दिखाई देता था। लेकिन जब हम बाबा के पास आए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, तो ब्रह्मा बाबा के बारे में सब कुछ देखा, मैंने देखा भी और सुना भी। तो हम लोग यद्यपि छोटे थे लेकिन देखते तो थे ना, और चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी मनुष्य के चलने से, उसके देखने से, उसके बोलने से, यदि वो अभिमानी है तो उसका अभिमान दिखाई देता है। लेकिन बाबा का चलना, बैठना, खाना पीना, क्लास में आना, ईश्वरीय महावाक्य सुनाना या सबसे मिलना, ये एक झलक छोड़ता था सबके ऊपर कि ब्रह्मा बाबा सबसे अधिक निरहंकारी बन गए हैं। यानी सब कुछ अपना त्याग करके भी उन्हें यह आभास नहीं था कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, मैं कहूंगा मैं जानता हूं, संसार के सबसे बड़े महान तपस्वी होने के बाद भी उन्हें ये कोई अभिमान नहीं था कि मैं तपस्वी हूं। इतने बड़े यज्ञ के मालिक थे वो, जिस भगवान ने उनको विश्व कल्याण का कार्य सौंपा था, लेकिन उनके किसी भी व्यवहार से ये झलकता नहीं था कि मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल सब बच्चे हैं, कोई गलती भी कर देता था तो बहुत प्यार से उसको समझाते थे, नहीं तो जब कोई गलती करता है मनुष्य का अभिमान झलकता है, मैं मालिक और इसने कर दिया, सुनता नहीं है मेरी। लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं देता था। उनको देखकर मुझे आंतरिक प्रेरणा हुई कि नहीं, इसको जीता जा सकता है। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, जो साधना के मार्ग पे आ गया, जिसको बहुत कुछ सुनना और सहन करना पड़ा, वो निराभिमानी हो सकता है तो अवश्य हम भी हो सकेंगे।
जी, जी,
तो ये असत्य है, ये गलत है कि कोई हो नहीं सकता। ठीक है, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, हो सकता है उन्होंने इस पे कम ध्यान दिया हो, लेकिन अगर मनुष्य इसके बारे में केयरफुल है तो इसको जीता जा सकता है।
जी 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 जी, बहुत सुंदर बात भाई जी आपने बताया कि संस्था का प्रमुख और संस्था का हेड होकर के भी अपने आप को निमित्त बना करके रखे, और तभी ऐसी संस्थाएं फलीभूत होती है, आगे बढ़ती है। हम आपके और विचार जानेंगे इस पर। जहां पर मैंपन आता है वहां पर अहंकार पैदा हो जाता है और वो बड़ा रूप बन जाता है। तो सच में कोई व्यक्ति अगर कार्य भी करे और संस्था सबके बीच में बड़ा बन करके भी रहे और मैंपन भी न रहे, तो उस अहम को धीरे धीरे करके कैसे खत्म करें हम?
और मनुष्य के लिए असंभव नाम का शब्द केवल एक असंभव ही शब्द है, बाकी ऐसा कोई चीज नहीं कि जिसे हम संभव नहीं कर सकते। यदि मनुष्य ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, वो बिगड़ी को बना सकता है, जीवन की धारा को बदल सकता है, दुर्भाग्य को वो सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है, वो कठिन से कठिन मार्ग को आसान राह बना सकता है, अगर उसके इरादे बुलंदी पर हो तो। लेकिन जब हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, जब हम अपने मन की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी हार हमें दिखाई देने लगती है। जैसे भाई जी बता रहे थे तो मुझे भी याद है हमारी मनोहर इंदिरा दादी हुआ करती थी, जो हमें यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी, तो मुझे बड़ी अच्छी बातें लगती थी बाबा की। बहुत ही संपन्न जीवन था, बहुत ही धनवान रहे हैं वो, लेकिन जब वो यज्ञ में आए, संपूर्ण त्याग किया, संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए, तब छोटे छोटे काम, जो काम उनके कभी सर्वेंट किया करते थे, पांच छह सर्वेंट उनके आगे पीछे रहा करते थे, वो छोटे छोटे काम बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से सबके बीच में बैठ के किया करते थे। बाबा जैसे फॉर एग्जाम्पल सब सब्जियां काट रहे हैं, 400 लोगों का भोजन बनना है, तो हमारे बाबा भी बैठ करके सब्जी काटते थे।
अच्छा।
अनाज साफ कर रही है माताएं, दाल साफ कर रही हैं, तो बाबा भी उनके बीच में बैठ करके दाल साफ करते थे, और साथ में कुछ ना कुछ शिक्षाएं भी देते थे। जैसे चावल में कुछ काला या कुछ पत्थर निकल गया, तो वो प्यार से वो शिक्षा भी देते थे, देखो चावल तो बहुत अच्छे हैं, वाइट है, लेकिन ये जो काला दाना है ना, ये काला पत्थर है ना, ये दूर से ही दिखाई दे रहा है, अगर ये इसमें रह गया तो पूरे चावल का स्वाद बिगड़ जाएगा, मुंह के नीचे आएगा, कंकरीला लगेगा। इसी तरह से हमारे में 10 गुण है ना, लेकिन एक बुराई है, तो वो इसी तरह से हमारे जीवन को कंकरीला बना देती है। तो ऐसे काम करते हुए बातों बातों में बहुत अच्छी, बहुत मिठास से शिक्षा बाबा देते थे। बाबा ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, या तुम खराब हो या तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जैसे बाबा के सामने हर प्रकार के बच्चे बैठे रहते थे, कोई कोई ऐसे भी होते थे जो करेले से कड़वे होते थे, नीम पर चढ़े हुए होते थे, मतलब टोटली व्यवहार बोल सोच में कड़वाहट भरी होती थी, लेकिन बाबा उसे भी बड़े प्यार से कहते थे तुम तो मेरे मीठे बच्चे हो, और मीठा बोल बोलकर बोल कर उनमें मधुरता का गुण भर दिया।
जी, जी, जी।
तो ये बाबा की निरहंकारिता है जो वो छोटे से छोटे को भी बड़ा सम्मान देकर प्यार देकर के चलाते थे। उनके जीवन में ईगो तो दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे ही हमारी दादी प्रकाश मणि थी, हमारे लिए आदर्श, हमारी रोल मॉडल थी, इस धरा के लिए एक बहुत सुंदर तोहफा थी हमारी दादी प्रकाशमणि। उनका भी जीवन हमने बहुत नजदीक से देखा जिसमें अहंकार की बू नहीं आती थी, जिसने अपने जीवन में झुकना सीखा। हमने कई बार ऐसा देखा कि छोटे किन्हीं ना किन्हीं बात पर, या संगठन बहुत बड़ा है, आपसी मनमुटाव पर नाराज हो जाते थे, तो दादी खुद अपने पांव से चलकर उन छोटों के पास जाती थी, उनके सर पे हाथ रखती थी, उनको मनाती थी और उनकी तरफ से खुद सर झुका करके सॉरी बोल देती थी। जबकि इंटरनेशनल संस्था की चीफ थी वो, लेकिन उनको इस बात का अहम ही नहीं था, भाव ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, इतनी आश्रम, इतने भाई बहने मेरे अंडर में हैं, ये भाव ही नहीं था। तीसरी बात हमारी दादी जानकी, हमारी दादी जानकी जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी महिला है जो मोस्ट स्टेबल माइंड रखती है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी महिला है जो 100 साल की होने के बाद भी इंटरनेशनल संस्था का आज भी सुचारू रूप से संचालन कर रही है। लेकिन उनके पास जाकर देखिए, एकदम निरअहंकारी, कोई भी अहम नहीं, कोई भी ईगो नहीं। और कभी भी आप उनके पास जाइए ना, तो ये नहीं कि वो ऊपर बैठे तो हम जमीन पर बैठे हैं, वो अपनी बाजू में बिठाती है, हाथ मिलाती है, सर पे हाथ रखती है, प्यार करती है। उनके पास जाकर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी दादी माँ के पास आए हों। वही दुलार, वही प्यार हमारी दादियों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ छोटे भाव, छोटे बड़े भाव का, गरीब अमीर का कोई भेदभाव है ही नहीं। एक होमली फीलिंग हमारी दादियों ने हमें दी, जबकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठी हैं। अगर उनके जीवन में ईगो नहीं है और वो अपने अहंकार को जीत सकती है, तो वो मेरे लिए भी पॉसिबल है। या तो वो पॉसिबल किसी के लिए नहीं होता, और यदि कुछ महान आत्माओं ने इस पर विजय प्राप्त की है, इस पर अपनी अधिकार दिखाया है कि हम अहंकार को जीत सकते हैं, अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगी कि हम झांकें अपने अंदर, जब तक हम झांकेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम चेंज नहीं कर पाएंगे।
आज विशेष रूप से हमने ये जानकारी प्राप्त की है और सीखा भी कि एक व्यक्ति कैसे अपने अहम को खत्म कर सकता है, उसको नीचा कर सकता है, दूसरे गुण को विकास कर सकता है। भाई जी, आपने बताया कि दादी के बारे में, बाबा के बारे में, इस संस्था का प्रमुख, इस संस्था का संचालन करते हुए भी कैसे बच्चों के साथ बच्चे बनकर के, बड़ों के साथ बड़े बनकर के, सुनने में तो संभव लगता है, लेकिन चूंकि आपने बहुत बचपन से, आप भाग्यशाली हैं, उनको नजदीक रहे हैं, देखे हैं, तो हमें जानने को मिला कि सच में इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सुनने का मन कर रहा है, और भी आपसे सुनते रहेंगे, लेकिन समय की एक सीमा है। आज तीनों आप उपस्थित हुए, बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच इस संसार में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ संभव है। हम बाल्यकाल से ही ये सुनते आ रहे हैं कि संभव तो सब कुछ है, लेकिन करना कोई चाहता नहीं है। आज हमने जाना कि इस संस्था का जो प्रमुख अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके भी तपस्या के माध्यम से एक ऐसी चीज पर विजय प्राप्त किया, जिसके बारे में हम शास्त्रों में विद्वानों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हमारे विद्वानों ने आज बताया कि अगर इसके ऊपर थोड़ा प्रयास किया जाए, इसके ऊपर थोड़ा मेहनत किया जाए, तो सचमुच विजय प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ी सी चेकिंग की आवश्यकता है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, अंदर झांकने की आवश्यकता है। जितना जितना आप अंदर झांकते जाएंगे, उस अहम को पकड़ते जाएंगे, उतना उतना आपका अहम समाप्त होता जाएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।